पहला कुरिन्थियों अध्याय 11। सो तुम लोग वैसे ही मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे हर समय याद करते रहते हो और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका सावधानी से पालन कर रहे हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हर ऐसा पुरुष जो सिर ढककर प्रार्थना करता है या परमेश्वर की ओर से बोलता है वह परमेश्वर का अपमान करता है जो अपना सिर है। पर हर ऐसी स्त्री जो बिना सिर ढके प्रार्थना करती है या जनता में परमेश्वर की ओर से बोलती है वह अपने पुरुष का अपमान करती है जो उसका सिर है। वह ठीक उस स्त्री के समान है जिसने अपना सिर मुड़वा दिया है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो वह अपने बाल भी क्यों नहीं मुंडवा लेती? किंतु यदि स्त्री के लिए बाल मुंडवाना लज्जा की बात है तो उसे अपना सिर भी ढकना चाहिए। किंतु पुरुष के लिए अपना सिर ढकना उचित नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप और महिमा का प्रतिबिंब है। किंतु एक स्त्री अपने पुरुष की महिमा को प्रतिबिंबित करती है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि पुरुष किसी स्त्री से नहीं बल्कि स्त्री पुरुष से बनी है। पुरुष स्त्री के लिए नहीं रचा गया बल्कि स्त्री की रचना पुरुष के लिए की गई है। इसलिए परमेश्वर ने उसे जो अधिकार दिया है उसके प्रतीक रूप में स्त्री को चाहिए कि वह अपना सिर ढके। उसे स्वर्गदूतों के कारण भी ऐसा करना चाहिए। फिर भी प्रभु में न तो स्त्री पुरुष से स्वतंत्र है और न ही पुरुष स्त्री से, क्योंकि जैसे पुरुष से स्त्री आई वैसे ही स्त्री ने पुरुष को जन्म दिया। किंतु सब कोई परमेश्वर से आते हैं। स्वयं निर्णय करो, क्या जनता के बीच एक स्त्री का सिर उघाड़े परमेश्वर की प्रार्थना करना अच्छा लगता है? क्या स्वयं प्रकृति तुम्हें नहीं सिखाती कि यदि कोई पुरुष अपने बाल लंबे बढ़ने दे तो यह उसके लिए लज्जा की बात है और यह कि एक स्त्री के लिए यही उसकी शोभा है। वास्तव में उसे उसके लंबे बाल एक प्राकृतिक ओढ़नी के रूप में दिए गए हैं। अब इस पर यदि कोई विवाद करना चाहे तो मुझे कहना होगा कि न तो हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रथा है और न ही परमेश्वर की कलीसिया में। अब यह अगला आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा आपस में मिलना तुम्हारा भला करने की बजाय तुम्हें हानि पहुँचा रहा है। सबसे पहले यह कि मैंने सुना है कि तुम लोग सभा में जब परस्पर मिलते हो तो तुम्हारे बीच मतभेद रहता है। कुछ अंश तक मैं इस पर विश्वास भी करता हूँ। आखिरकार तुम्हारे बीच मतभेद भी होंगे ही, जिससे कि तुम्हारे बीच में जो उचित ठहराया गया है वह सामने आ जाए। सो जब तुम आपस में इकट्ठे होते हो तो सचमुच प्रभु का भोज पाने के लिए नहीं इकट्ठे होते, बल्कि जब तुम भोज ग्रहण करते हो तो तुम में से हर कोई आगे बढ़कर अपने ही खाने पर टूट पड़ता है और बस कोई व्यक्ति तो भूखा ही चला जाता है जबकि कोई व्यक्ति अत्यधिक खा पी कर मस्त हो जाता है। क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अपने घर नहीं है? अथवा इस प्रकार तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर नहीं करते और जो दीन है उनका तिरस्कार करने की चेष्टा नहीं करते? मैं तुमसे क्या कहूँ, इसके लिए क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ? इस विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूँगा क्योंकि जो सीख मैंने तुम्हें दी है वह मुझे प्रभु से मिली थी। प्रभु यीशु ने उस रात जब उसे मरवा डालने के लिए पकड़वाया गया था एक रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद उसने उसे तोड़ा और कहा,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मुझे याद करने के लिए तुम ऐसा ही किया करो।
उनके भोजन कर चुकने के बाद इसी प्रकार उसने प्याला उठाया और कहा,
यह प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नया वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो तभी मुझे याद करने के लिए ऐसा करो।
क्योंकि जितनी बार भी तुम इस रोटी को खाते हो और इस प्याले को पीते हो उतनी ही बार जब तक वह आ नहीं जाता तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। अतः जो कोई भी प्रभु की रोटी या प्रभु के प्याले को अनुचित रीति से खाता पीता है वह प्रभु की देह और उसके लहू के प्रति अपराधी होगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले अपने को परखे और तब इस रोटी को खाए और इस प्याले को पिए, क्योंकि प्रभु के देह का अर्थ समझे बिना जो इस रोटी को खाता और इस प्याले को पीता है वह इस प्रकार खा पी कर अपने ऊपर दंड को बुलाता है। इसलिए तो तुम में से बहुत से लोग दुर्बल हैं, बीमार हैं और बहुत से तो चिर निद्रा में सो गए हैं। किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया होता तो हमें प्रभु का दंड न भोगना पड़ता। प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है ताकि हमें संसार के साथ दंडित न किया जाए। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब भोजन करने तुम इकट्ठे होते हो तो परस्पर एक दूसरे की प्रतीक्षा करो। यदि सचमुच किसी को बहुत भूख लगी हो तो उसे घर पर ही खा लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा एकत्र होना तुम्हारे लिए दंड का कारण न बने। अस्तु, दूसरी बातों को जब मैं आऊंगा तभी सुलझाऊंगा।